आर्ट ऑफ रेस्ट। कल एक युवक ने सवाल किया, क्या महाराज साहब अब हमें रेस्ट करना भी आप सिखाएंगे क्या? ये तो हमें ऑलरेडी आता है, नहीं आता? नहीं आता? लेडीज कह रही है नहीं आता। आप लोगों को आता है ना, रेस्ट करना आता है ना? बोले बस मौका मिलना चाहिए, रेस्ट ही रेस्ट है। कई लोग बोलते हैं रेस्ट इज द बेस्ट, रेस्ट करना एकदम बेस्ट है, लेकिन बेस्ट तरीके से रेस्ट कैसे करना, दिस इज रियली एन आर्ट ऑफ रेस्ट। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, क्योंकि आज के ज़माने में हम सब लोग रेस्टलेस हो रहे हैं। नहीं, सुबह नींद में से उठे तब से भागा दौड़ चालू होती है, और रात बिस्तर पे सोए तब तक भी कल के दिन के लिए ख्वाब चल रहे होते हैं, कल के दिन मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है सारी प्लानिंग चल रही होती है। और इवन देन आधी रात को अगर आँख खुल जाए ना, तो आप सोचोगे कि दिमाग अभी भी इतना चल रहा था, शांत कहाँ था? कभी देखा होगा आपने, कभी अचानक नींद में से आँख खुल जाए, जब सभी लोग सो रहे और आपकी आँख खुल गई, आप अपनी दिमाग की बातें सुनो तो थक जाओगे, हैरान हो जाओगे, इतना चपर चपर कर रहा है, अभी सामने कोई आदमी नहीं है तब भी बोले जा रहा है। वो माइंड को निरंतर बोलने की इतनी आदत हो गई कि हम सब लोग रेस्टलेस हो गए। हर काम करने से पहले तनाव, करते समय तनाव, करने के बाद तनाव, तीनों हालत में तनाव हो रहा है। ये कारण है कि हम लोगों की जीवनी शक्ति, हमारी प्राणधारा जो ऊपर उठनी चाहिए, ऊर्ध्वगमन उसका होना चाहिए, और प्राणधारा जो विस्तृत होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, आज के युग में हम सबकी प्राणधाराएं ऊर्ध्वगामी होने की बजाय ऊपर उठती कम नीचे गिरती ज्यादा, दाएं बाएं बिखरती ज्यादा है। और तब सभी लोगों का चेहरा, प्रकृति में शायद ऐसा किसी का चेहरा नहीं होगा जैसा आज इंसानों का चेहरा हो गया, एकदम आर्टिफिशियल। नहीं, अगर उसको दिखाना हो कि मैं फ्रेश हूं, तो फ्रेश होने के लिए उसको बहुत कुछ वो मेकअप शेकअप करना पड़ता है ना? लेकिन सूरज उगता है, किसी फूल को खिलने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, फूल सहजता से खिलता है, पक्षी सहजता से गीत गुनगुनाते हैं, और वृक्ष झूम उठते हैं। लेकिन आदमी नींद में से आंख खुले तो ना तो फूलों की तरह खिलता है, ना पक्षियों की तरह गीत गुनगुनाता है, और ना ही वृक्षों की तरह पुष्पित सुरभित और आनंदमय होकर के झूमता है। क्यों, आदमी क्यों भूल गया ये सब कुछ? क्योंकि उसकी नींद भी प्रॉपर नहीं है, तो जागरण भी प्रॉपर नहीं है। ना नींद स्वस्थ, ना जागरण स्वस्थ, तो फिर दिन भर की दिनचर्या स्वस्थ कैसे होगी? दिनचर्या भी ऐसी हो गई कि जहां हम हैं हम वहां नहीं हैं, जहां हम पहुंचते हैं हम वहां नहीं रहते हैं, जहां से हम लौट आते हैं अथवा जहां हमें जाना बाकी है, हम सब लोग निरंतर वहीं पर घूमते रहते हैं। कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, हम हैं कहां, कोई हमारा एड्रेस पूछे तो बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम सब लोग रेस्टलेस हो गए। सबसे बड़ी बीमारी है तनाव, चिंता, और ये बीमारी, बाकी बीमारियों के लिए तो डॉक्टर साहब मिल जाएंगे बहुत तरह के, लेकिन डॉक्टर साहब को भी जब बीमारी हो जाए तो क्या करोगे, हमारे पास आओगे? बहुत सारी बीमारियों के डॉक्टर है, लेकिन चिंता वाली बीमारी का डॉक्टर नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जाओ उस डॉक्टर को भी चिंता है कि उसकी क्लिनिक कैसे चलेगा। अच्छा, क्लिनिक बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है तो भी चिंता है, इतने सारे पेशेंट और टाइम मेरे पास में कम है, हैंड्स मेरे पास में कम है, मैं क्या करूं? मतलब आज के युग में ना राजा ना प्रजा, तनाव मुक्त तो कोई भी नहीं दिखता। अच्छा, रही बात साधु संत, पहले जमाने में हम साधु संतों के लिए कहते, अच्छा चलो इनको तो कोई फिक्र नहीं, तो उनका नाम था फकीर। फकीर शब्द की परिभाषा थी कि जिसको कोई फिक्र नहीं, ताका नाम फकीर। पर अभी तो ऐसे फकीर मिलना भी मुश्किल, साधु संतों को चिंता है कि प्रवचन में लोग कौन आएंगे। कई एक साधु हमें भी मिले, कह रहे थे महाराज साहब एक चातुर्मास पूरा होता है तो चिंता चालू हो जाती है, नेक्स्ट चातुर्मास कहाँ करना। हम मुस्कुराते, हम कहते ठीक बात है, जब तक आर्ट ऑफ रेस्ट नहीं सीखो तब तक चिंता होती है। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी ने आर्ट ऑफ रेस्ट नाम ईजाद किया। ये नाम इससे पहले शायद आप में से किसी ने सुना हो, सुना नहीं सुना ना, आर्ट ऑफ लिविंग सुना है ना, लेकिन आर्ट ऑफ रेस्ट किसी ने नहीं सुना होगा। ये नाम और ये कला और ये ज्ञान और ये विज्ञान श्री विराट गुरु जी की देन है। हम उनके बारे में कुछ क्या कहे, जो भी कहेंगे शब्द बहुत अल्प है, एक दिन का वाकया सुनाती हूँ केवल। विराट गुरु जी जब हमें अध्ययन कराते थे तो वे बोल रहे होते, ऐसे चेयर पे बैठे, हम सब लोग बैठे हैं पास में और हम लोग ध्यान लगा के सुन रहे होते, और कभी कभी गुरु जी कहते चलो नोट करना है तो नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। जब सूत्रों की व्याख्याएं चल रही होती तो कभी कभी गुरु जी ने नोट डाउन करने के लिए हमें परमिशन दी, बहुत सालों तक नहीं दी, बाद में दी। बहुत सालों तक हमें लिखने की परमिशन नहीं थी। आप सोच रहे हो भला ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कई कई वर्षों तक वो कहते थे कि लिखना नहीं, अगर लिखोगे तो शब्द तो आपके पास में रह जाएंगे लेकिन प्राण खत्म हो जाएंगे। आप विद्वान तो हो जाओगे, शब्दों के परिग्रही तो हो जाओगे, आपके पास में शब्दों का भंडार तो हो जाएगा, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन ये चेतना जो आप में जागनी चाहिए, ये ज्ञान जो आप में प्रकट होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए विराट गुरु जी हमेशा लोगों को प्रवचन के दौरान भी लिखने की मनाई करते थे। वो कहते प्रवचन सुनते वक्त कुछ भी मत लिखो, मात्र सुनो, मात्र सुनो, सुनते वक्त सारे कार्य भूल जाओ, मात्र सुनो तो सुनी हुई बात सीधी अंदर जाएगी। तब तुम उस व्यक्ति के साथ जो बोल रहा है उसके साथ एक रिदम में आओगे, एक हारमोनी में आओगे, और जब एक बार रिदम और हारमोनी तुम्हारी बन गई तो वक्ता जिस लेवल से बोल रहा है उस लेवल तक वो तुम्हें पहुंचा देगा। सपोज वो दिमाग से बोल रहा है तो दिमाग तक जाओगे, दिल से बोल रहा है तो दिल तक जाओगे, नाभि से बोल रहा है तो नाभि तक जाओगे। अगर उसका पूरा अस्तित्व बोल रहा है तो आप पूरे अस्तित्व को जागृत कर देगा, जंकृत कर देगा। जैसे कुशल वीणा वादक जब वीणा बजाता है तो उस परिसर में अगर कोई एक वीणा बिना छेड़े हुए चुपचाप पड़ी है तो उस कुशल वीणा वादक की वीणा से, जंकृत ध्वनियों से वह क्षमता, वह ओज, वह एनर्जी प्रकट होती है कि वो जो वीणा चुपचाप है उसके अंदर भी संगीत बज उठता है। तो आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी ने हमें लिखने को इसलिए मना किया, लिखो मत, शब्दों को मत इकट्ठा करो, मात्र सुनो, ये चैतन्य में उतर जाए और जब तुम्हारी चेतना जाग जाएगी उसके बाद किसी दिन जरूरत पड़ी तो हम कहेंगे लिखो। तो कुछ वर्षों के बाद उन्होंने जब लिखने की आज्ञा दी तो एक दिन की घटना है, हम लोग मेरे स्थानक में चातुर्मास के दौरान बैठे थे, गुरुजी बोल रहे थे, कई कई घंटे हो गए वो नॉन स्टॉप बोल रहे थे और लिखते लिखते हमारा हाथ थक गया। तो हमने पास में बैठे हुए साध्वी जी को बोला आप लिखो, जब उनका हाथ थक गया तो तीसरे साध्वी जी को बोला आप लिखो, वो तीसरे साध्वी जी भी लिखते जा रहे हैं और गुरुजी नॉन स्टॉप बोल रहे हैं एकदम इजी वे में, जैसे अपन नॉर्मल बातें कर रहे हैं ऐसे। जब वापस मेरा टर्न आया मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप थकते नहीं, कितने घंटों से बोल रहे हो? बोले मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने कहा हम पांच एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, आप इतना कर रहे हो सुबह से शाम तक, हर दिन में मतलब आप हैरान होगे, 10-10 किताबों का मैटर एक साथ चल रहा है, जैसे कि अलग 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 विषयों पे गुरुजी का जब जो मूड हुआ, जब जो भाव आया, जब जो क्वेश्चन आया, जब जो निमित्त सामने आया वो बोल रहे। और हमने कहा आप थकते नहीं? बोले मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा क्यों, जो करेगा वो थकेगा। मैंने कहा आप कुछ कर नहीं रहे? ना मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बैठा हूँ। मैंने कहा फिर हम, आप अपनी सोचो, आप कर रहे हो या होने दे रहे हो, आप कार्यों को कर रहे हो या कार्यों को जी रहे हो, आप कार्यों को कर रहे हो या कार्यों को जी रहे हो। हमने कहा वो कैसे समझे? तो बोला अगर जी रहे हो तो थकोगे नहीं, कर रहे हो तो थकोगे। समझ में आया? नहीं आया ना, मुश्किल था। गुरुजी ने एक दृष्टांत दिया कि जो स्विमिंग करते हैं लोग, आप लोगों में से बहुत लोग स्विमिंग करते हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको देखो, एक आदमी स्विमिंग करते समय हाथ पैर दोनों छोड़ देता है, उसकी बॉडी खुद ब खुद तिरती है, वो कुछ भी नहीं करता, हाथ पैर भी नहीं मारता, और तब भी वो बहुत मस्त तैरता है ना। जो बेस्ट तैराक होते हैं वो हाथ पैर भी नहीं मारते हैं, वो केवल अपने आप को छोड़ देते हैं और पानी की धार के साथ खुद ब खुद तैरते हैं। दिस इज एन आर्ट ऑफ रेस्ट। अपने आप को छोड़ दो, प्रकृति हमारे में से प्रवाहित होगी, हवाएं हम में से गुजरा करेंगी, सूर्य का तेज हमारी दृष्टि के माध्यम से स्वयं इस सृष्टि में बिखरा करेगा। हम कुछ भी ना करते हैं तब भी जीवन जिया जा सकता है। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा भैया, श्वास आप लेते हो या आती है? श्वसन क्रिया करते हो, कॉन्शियसली करते हो कि मैं सांस ले रहा हूं जी, अभी लेना बंद कर रहा हूं जी थोड़ी देर के लिए? ये हमारे हाथों में नहीं है। प्रकृति की बहुत सारी क्रियाएं खुद ब खुद हो रही है। आप देखो वृक्ष बड़े होते हैं कैसे, कोई बड़ा करता है? आर्ट ऑफ रेस्ट। वे कुछ नहीं करते, प्रकृति है स्वयमेव काम करती है। वे सूरज की रोशनी में भी बड़े होते हैं और रात के अंधेरे में भी, रात के अंधेरे में भी वे पोषण ले रहे होते हैं, वे पूर्ण विश्राम में होते हैं तब भी वे पूरी धरती से अपना पोषण ले रहे होते हैं, चंद्रमा की किरणों से पोषण ले रहे होते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं फिर भी वृक्ष बड़े हो रहे होते हैं। लेकिन आज हर माँ बाप को क्या लगता है, मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रहा हूं? कितना स्ट्रेस है हमारा साहब आज के युग में। एक बच्चे को पालना, बहुत माता ऐसा बोलती है हमको, एक बच्चे को बड़ा करना हमारा साहब बहुत भारी काम है, बहुत मुश्किल काम है। हमने कहा अच्छा जी आप कैसे बड़ा कर रहे? डिसाइड कर सकोगे उसकी हाइट क्या हो? नहीं ना, बच्चे खुद ब खुद बड़े होते हैं। हम केवल अपना अपना पार्ट पूरा करते हैं, अपना अपना रोल पूरा करते हैं। आर्ट ऑफ रेस्ट, विश्राम में हो जाओ। विश्राम में होने का मतलब है कर्ता भाव से मुक्त हो जाना, ईगोलेसनेस स्टेज। कोई अहंकार नहीं कि मैं करता हूं, मुझे करना है, मैंने किया, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, ओ मैं तो कर ही नहीं पाया। अब अच्छे अच्छे नर्तकियों को, नर्तकों को जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, कभी उनसे पूछना आप डांस करते हो क्या? वो बोलेंगे नहीं, डांस होता है। हमारे सामने बैठे चित्रकार, मूर्तिकार, इनसे पूछा आप बनाते हो क्या? नहीं, मैं तो केवल अपना एक पार्ट पूरा करता हूँ, जैसे तुलिका करती है, रंग करते हैं, कैनवास करता है, मैं भी वहां जाकर के खड़ा हो जाता हूं, उसके बाद में बाकी सारे काम खुद ब खुद होते हैं। पर फिर भी हम इंसानों को कितना घमंड होता है, मैं फैक्ट्री चलाता हूं जी। हमने बोला आप फैक्ट्री चलाते हो? बोले बिल्कुल मैं फैक्ट्री चलाता हूं हमारा साहब। मैं कहा आप नहीं गए किसी दिन फैक्ट्री में तो भी फैक्ट्री चल जाएगी, लेकिन वर्कर्स नहीं गए तो नहीं चलेगी। तो बताओ वर्कर्स चलाते हैं आप चलाते हो? बोले नहीं नहीं वर्कर्स को काम तो मैंने दिया है। तो यही तो घमंड है कि मैं चलाता हूं। जब तक ये घमंड है, अहंकार है, तब तक अटैचमेंट है, आसक्ति है। अहम और आसक्ति दोनों जुड़े हुए। अहम है आसक्ति है, आसक्ति है अहंकार है ही। इसका लक्षण क्या? तनाव, चिंता, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस। तो सीखना क्या? आर्ट ऑफ रेस्ट। कैसे सीखेंगे आर्ट ऑफ रेस्ट? यूं तो बहुत सारे तरीके आर्ट ऑफ रेस्ट सीखने के। जैन दर्शन में जो सामायिक सूत्र है, सामायिक साधना है, करिमी भंते का पाठ है, वह करिमी भंते का पाठ आर्ट ऑफ रेस्ट की साधना है। करवी बंती के पाठ में साधक प्रतिज्ञा करता है सामायिक में आने की, और प्रतिज्ञा करते समय वह बोलता है, न करेमि न कारवेमि करन तंपी अन्नम न समणु जानामि मणिनम वायाय कायनम। यानी मैं न करूंगा, न करवाऊंगा, न कौन क्या कर रहा है इसका अनुज्ञान नहीं करूंगा, इसका ध्यान भी नहीं रखूंगा, मन से, वचन से और काया से। यानी तीन करण, तीन योग, मतलब जितना भी हमारे पास में करने की क्षमताएं हैं, साधन है, उन सब से मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। हैरानी की बात, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो काम होगा कैसे? कैसे काम होगा? आपका घर कैसे चलेगा? दुकान कैसे चलेगी? फैक्ट्री कैसे चलेगी? न करना कैसे पॉसिबल है? देखो, जब आप नहीं करोगे, आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि ऊर्जा कभी रुकती नहीं है, गति कभी बंद होती नहीं है, गति का स्वभाव है कि गति कभी रुकेगी नहीं, केवल दिशा बदल देगी। एनर्जी कभी स्टॉप नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, केवल अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, फॉर्म्स चेंज कर सकती है, लेकिन वो हमेशा इन मोशन मोड में ही रहेगी। अब क्या है, आप नहीं करोगे मतलब आप ईगो में नहीं आओगे, तब भी आपका शरीर अवश्य कर्म करेगा। जैसे कि आप और हम कुछ ना करें तब भी समय पर नेचुरल कॉल्स हमारी बॉडी को आती है और नेचुरल ऑर्डर्स हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फुलफिल करती है, करती है नहीं? कोई सोचे मैं करता हूं? हाँ, हमारे करने से कुछ होता है क्या? हमारी बॉडी अपना वर्क खुद करती है, उसको नींद स्वतः आती है, नींद से जागती भी है, स्वतः है। सुबह उठ करके अगर हमें टॉयलेट जाना है तो बॉडी अपना काम नेचुरल ऑर्डर से खुद ब खुद पूरा कर रही होती है। हम कुछ ना करें तब भी शरीर अपना आवश्यक कार्य करता है। एक एग्जाम्पल दिया था एक बार गुरुजी ने हमें, गुरुजी के पास कोई साबुन बनाने वाला व्यक्ति आया जिसकी साबुन बनाने की फैक्ट्री थी। बातचीत के दौरान वो बोलने लगा कि हम साबुन बनाते तो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो विराट गुरुजी बोले, अच्छा पानी किस अंदाज में डालते हो? ऐसी? वो बोला, उसमें क्या, पानी छोड़ देते डाल देते हैं, साबुन को जितना लेना होता है उतना लेता है, बाकी का वो खुद ही खुद बाहर छोड़ देता है। गुरुजी ने ये क्वेश्चन हमें बताने के लिए पूछा और फिर हमारी तरफ देख करके बोला, समझ आया? हमने कहा, कैसे? बोला, जो आवश्यक होगा वो लेगा, बाकी का छोड़ देगा। शरीर भी ऐसा ही करता है, आप कुछ ना करो तब भी उसको जो आवश्यक है, हवा पानी, वो लेगा, और जब छोड़ना होगा। तो मैंने कहा, फिर तो आदमी कुछ भी ना करे? बोले, ऐसा संभव ही नहीं है, जब तक तीन योग है आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो हमने कहा, अगर कुछ ना कुछ करेगा ही तो फिर आर्ट ऑफ रेस्ट कैसे हुआ? गुरुजी बोले, बस वो कर्ता बने के भ्रम से बाहर आ जाए तो आर्ट ऑफ रेस्ट हो गया। कर्ता बने के भ्रम से बाहर आ जाए, हमने कहा वो कैसे? बोला, बस यही तो हम सबको भ्रम है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। आप ये भ्रम छोड़ के तो देखो। और ये विराट गुरु जी की वचन का अतिशय रहा कि जिन जिन क्षणों में ये भ्रम हटा, उन उन क्षणों में प्रकृति ने मिरेकल पैदा किए। वॉट इज मिरेकल? क्या है मिरेकल? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मिरेकल? आदमी जो कुछ सोचता नहीं और कुछ अचानक हो जाता है, वो कहता है, ओ ग्रेट मिरेकल, इट्स मिरेकल, चमत्कार। चमत्कार किसको बोला? जो तुमने नहीं किया, जो हमने नहीं किया और हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? चमत्कार। अगर पूरे जीवन को चमत्कार बनाना है, ये अभ्यास थोड़े पलों से भी करना स्टार्ट करो, ये अपने ईगो को बीच में लाना बंद करो। अब देखो घटनाएं खुद ब खुद कैसे घटती है, कैसे घटती है, कैसे संभव है? केवल प्रकृति से सीखो। पक्षी उड़ने के लिए कुछ नहीं करते, केवल पंखों को फैलाते। स्टार्टिंग में केवल उड़ना स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने दो बार गति दी, उसके बाद में पंखों को छोड़ देते हैं और आकाश में, वायुमंडल में खुद ब खुद उड़ते हैं। मछली जल में खुद ब खुद तैरती है। दिस इज एन आर्ट ऑफ रेस्ट। प्रकृति में हर एक व्यक्ति अपने कामों को तैरते हुए भी कर सकता है, बिना पकड़ बनाए भी कर सकता है, बिना चिंता किए भी कर सकता है, केवल अपने छोटे से अहंकार को, शुद्र अहंकार को, अहम करोमि मैं करता हूं, इस अहंकार को जरा छोड़े तो सही। आप देखो हैरानी होगी कि जब हमारे भीतर से जहां जो शब्द निकलने हैं खुद ब खुद निकलेंगे। कहीं जाना है अंदर से ख्याल आएगा, ओ इस टाइम जाता हूं, जाओगे और घटना घट जाएगी। और आप जब घटना घट जाएगी तो कहोगे मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की थी, कुछ आयोजन नहीं किया था, लेकिन अचानक उठा गया और काम हो गया। अरे भैया ये भाव आप में कहां से आया अचानक? प्रकृति में बहुत सारी घटनाओं को घटना है, उन घटनाओं को घटने में प्रकृति सतत सबका सहयोग ऑटोमेटिकली ले रही है। आपका भी सहयोग ले लेगी। किस आधार पे लेगी? आपके अंदर रहे हुए पुराने भाव कल्प के अनुसार। पुराना भाव कल्प यानी पुराना कर्म, पुराना संकल्प, पुराने संस्कार सबके अंदर पड़े हैं। आज नया कुछ भी ना करो ना, तब भी वो संस्कार ऑटोमेटिकली समयानुसार आएंगे, आपसे काम करवाएंगे, और वो काम होने के साथ ही उसकी स्मृति खत्म हो जाएगी। जो काम हुए और उसकी स्मृति खत्म हो गई, यानी कि अब उसका नया भविष्य बंधन नहीं हुआ, नई भविष्य की रेखा नहीं खींची, इसका मतलब यह है कि अब वो घटना घटी और हटी, यानी अब आप उतने क्षणों में मुक्त हुए, उतनी घटनाओं से मुक्त हुए, उतनी घटनाओं के साथ में दोबारा आपको अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं बची। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ होती है। इसके लिए आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, केवल सहज होने की जरूरत है। मतलब कोई ये सोचे मैं बहुत पूजा अनुष्ठान करूंगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, कोई ये सोचे मैं बहुत जप तप करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, मिरेकल होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ भी मत करो, केवल ईगोलेस हो जाओ, आई एम डूअर, इस सोच से मुक्त हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि नमो भाव में आ जाओ। नमो, नमो मतलब मोदी जी को प्रमोट नहीं कर रहे हम। कोई सोचे ओ नमो मतलब बड़ा सा भी मोदी जी की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, नमो मतलब नमो, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। जैसे हम छोटा सा आई को छोड़ते हैं ना, वैसे हम विराट हो जाते। ये विराट गुरु जी का ज्ञान है। अहम को छोड़ो, विराट हो जाओगे, और विराट होने के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, काम प्रकृति में स्वतः होंगे, स्वतः फूल खिलेंगे, स्वतः खिले हुए फूल झड़ेंगे और नए फूलों को स्थान मिलेगा। गति कभी नहीं रुकेगी। आपके दिमाग में विचार भी स्वयमेव आएगा, आपके मुंह से शब्द भी स्वयमेव निकलेगा, आपकी बॉडी भी स्वयमेव कार्य करेगी, सारा काम खुद ब खुद होने वाला है। लेकिन कब? जबकि आदमी अपनी शुद्र सोच से बाहर आए, शुद्र अहंकार से बाहर आए, दिन भर की आकुलता व्याकुलता आतुरता से बाहर आए। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? बहुत सिंपल है, आप प्रयास करके देखो, थोड़ा सा अभ्यास करो। कि आपको बिजनेस की बहुत चिंता हो रही है, कर्जा चुकाने की बहुत चिंता हो रही है, बच्चों के पढ़ाई की बहुत चिंता हो रही है, आपको जहां 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 बहुत चिंता हो रही है, उन सारे स्थानों पर आप एक वाक्य बोलो, मैं अपने आप को हटाता हूं, घटनाओं को जैसे घटना है घटने दो, मैं अपनी चिंता को हटाता हूं, अपने अहंकार को हटाता हूं, घटनाओं को जैसे घटना है घटने दो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि घटनाओं को किस रूप में घटना है। कोई इतनी सरलता से अपने अज्ञान को स्वीकार कर ले कि मैं नहीं जानता कि घटनाओं को कैसे घटना है, घटने दो, मैं अपने अहंकार को हटाता हूं। अभ्यास करके देखो, जितने क्षण के लिए आपका अहंकार हटा, दिमाग की खुराफात हटी, यानी भागदौड़ हटी, यानी कि हाथ पैर मारना बंद किया, बॉडी को छोड़ा, आपको पानी खुद ही तिराएगा, पानी खुद ही तिराएगा। और ये पानी का भी बड़ा अद्भुत नियम है, कि तैरने वाले को डुबा देता है लेकिन डूबने वाले को तिराता है। हाथ पैर चलाने वाला कदाचित डूब जाए लेकिन जो हाथ पैर चलाना बंद कर देता है वो कभी पानी में नहीं डूबता है। अगर ये बात कहीं किसी अर्थ में समझ आ गई, आभार इस प्रकृति का कि कहीं कुछ पलों के लिए भी हम अहम रहित हो सके, आउट ऑफ रेस्ट में आए, तो घटनाएं खुद घटेगी, हमारा अहंकार दूर हो जाएगा। और जब अहंकार दूर होता है और घटनाएं घटती है, उसको कहते हैं मात्र निर्जरा होना। और जब अहंकार समेत घटना घटती है तो कुछ निर्जरा तो होती है लेकिन नया बंधन जरूर पड़ जाता है, क्योंकि भविष्य की रेखाएं फिर से खिंच जाती है। और जहां भविष्य की रेखाएं खिंच जाती है उसी का नाम है तनाव, संसार में जन्म मरण और ये सारी दुख परंपरा का सातत्य जो सबके साथ हो रहा है और छूट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दिन छूटेगा, ऐसा नहीं कोई भगवान आके छुड़ाएगा। ये आदमी को अपनी ही समझ से अपने अहंकार को अपने से अलग करना होगा। ये अहंकार की खोल हट जाए, आर्ट ऑफ रेस्ट में आ जाए। आर्ट ऑफ रेस्ट का एक तरीका ईगोलेसनेस, न करेमी न कार्वेमी का टेक्निक। थोड़ी देर के लिए भी बैठो, छोड़ो अपने आप को। आप देखो मुस्लिम धर्म के अंदर 5 नियम है, उनमें से एक नियम है नमाज अदा करना। और ये लोग दिन में 5 बार भी नमाज अदा करते हैं। और नमाज अदा करने में वर्ड्स क्या बोलते हैं, वर्ड्स का अपना कोई महत्व होगा लेकिन उससे बड़ा महत्व है कि उनका बॉडी का पोस्चर क्या होता है। 5 अंगों को जमीन पे झुका देते हैं पंचांग नमन करते हुए। देखा होगा ना आपने, जैसे आप लोग तिखुतों के पाठ में जब वंदामी नमन स्वामी बोल रहे होते हो तब पंचांग झुकाते हो, मथिन वंदामी बोलते हो तो 5 अंग झुका के जमीन पे सिर को टिकाते हो। ऐसे ही मुस्लिम लोग 5 बार करते हैं। और ये पोस्चर मात्र ही आदमी को न करेमी के स्टेज में ले जाता है, मैं नहीं करने वाला। तब वो क्या बोलता है, अगर कुछ होना है इंशाल्लाह, ईश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगा, अल्लाह की इच्छा होगी तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, वो अपने ईगो को छोड़ता है। जैसे ईगो को छोड़ा वैसे ही प्रकृति ने बादलों में से कुछ स्पेस दिया, स्पेस क्रिएट किया। और जैसे हमारे दिमाग में आए हुए विचारों के बादलों में कोई भी स्पेस क्रिएट हुआ, तो जैसे बादलों में स्पेस क्रिएट होता है तो सनलाइट बाहर आती है, ऐसे हमारे अंदर के विचारों, योजनाओं, कल्पनाओं, आकांक्षाओं, भय, चिंताओं से अगर जरा भी स्पेस क्रिएट हुआ तो हमारी आत्मा की लाइट बाहर आएगी। और वो जो आत्मा की लाइट बाहर आएगी बस उसी क्षण के अंदर विजन आएगा। और उस विजन में घटना को जैसे घटना है ना, वो या तो हमें दिखलाई पड़ेगी या हमें धक्का देगी हमारा रोल करने के लिए, और घटना घट के खत्म हो जाएगी और हम कहेंगे मैंने नहीं किया लेकिन हो गया। और जिस दिन ये लैंग्वेज हमारी आ जाए कि मैंने कुछ किया नहीं लेकिन हो गया, इसका मतलब नाउ वी आर इन ऑर्डर, अब हम इन ऑर्डर है, हम धर्म में है। और जब तक ये लगता है मैंने किया, तब तक आपने कितना भी अच्छा कर्म किया हो वो कर्म है, वह धर्म नहीं है। इसीलिए जो किया जाए वो कर्म, जो स्वयं में जिया जाए, ईगोलेस होकर के जो घटनाएं घट जाए वो धर्म है। घटना धर्म नहीं, हम धर्म। तब हम धर्म में होते हैं जब हम ईगोलेस होते हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास, इस टेक्निक के बहुत सारे आयाम हैं, डायमेंशन से कि कैसे हम आर्ट ऑफ रेस्ट को सीख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा अभ्यास करें कि जब सुबह उठे 5 मिनट के लिए पंचांग नमन करें, जब रात सोने जाएं 5 मिनट के लिए पंचांग नमन करें, और जब लगे कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, रेस्टलेस हो रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं क्या, करूं क्या नहीं करूं, अपने दिमाग को छोड़ दो। महसूस करो गुरु के चरण आपके सामने है और मस्तक झुका करके बैठ जाओ और एक ही प्रार्थना करो कि घटनाओं को जैसे घटना है घटे, मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूं। जैसे अहंकार को छोड़ दोगे घटनाएं स्वयमेव सही तरीके से घटेगी। और आप में से डिसीजंस राइट निकला करेंगे। अगर राइट डिसीजंस निकलते हैं तो आप इन ऑर्डर हो, लाइफ में धार्मिक हो। यही आर्ट ऑफ रेस्ट है। आर्ट ऑफ रेस्ट आदमी को ईगोलेसनेस स्टेज पे ले जाता है, और आर्ट ऑफ रेस्ट में आदमी कर्म करता नहीं, कर्म होते हैं। और जब कर्म करता नहीं और होते हैं तो आदमी अपनी क्षमताओं से कई गुना अधिक कर्मों को घटित देखता है। अगर आदमी करता है तो उसकी सीमा है, आदमी अकरता है तो वो असीम है। इसीलिए पूरी भारतीय संस्कृति में, हर धर्म में कहा गया कि परमात्मा अकरता है लेकिन अनंत सामर्थ्य वाला है, अनंत क्षमता वाला है, क्योंकि वो करता नहीं है इसलिए असीम है। और जो हम लोग हैं करता है, हम सब ससीम है, सीमित है। आर्ट ऑफ रेस्ट हमें असीम करता है। जैसे ईगो छूटा हम असीम हो जाते हैं। इसीलिए इस आर्ट ऑफ रेस्ट के एक तरीके को तो कम से कम हम अपनाएं कि दिन भर में कुछ पल के लिए अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने इस क्या बोलते हैं 2.5 किलो का दिमाग कुछ बोलते हैं ना, ढाई मन का बोलते हैं, तो इसको जरा छोड़ दो, नीचे झुका दो और वाकई छोड़ दो, भावनाओं से छोड़ दो। भाव ऐसा करो कि मैंने छोड़ दिया, अभी जो होना ऐसा हो, ऐसा भाव भी किया, लाइफ में मिरेकल्स होंगे। और जब मिरेकल्स होंगे तो आपको पता लगेगा वाओ आर्ट ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। जय हो।